Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
Dhanyavad Lalema, Namaskar Shrotao, Market Mantra mein aapka swagat hai. Aaj ki ank mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath share bazaaron par bhi nazar dalenge aur Shrotao. Aaj somvar hai, isliye hum aapke phone bhi seedhe karyakram mein shamil karenge. आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे. हमसे संपर्क करने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता फोन नंबर से पहले 011 लगाएं. प्रश्नों के उत्तर और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल. अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
नमस्कार जी.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग.
थैंक यू सोनू. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस रजिस्टर लॉसेस. सेंसेक्स फॉल्स 384 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,668. इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन इजेस टू 1.89% इन नवंबर दिस ईयर. एंड क्रूड ऑयल prices declined today. Brent crude trades at $73.84 per barrel.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट ने सेंसेक्स 384 अंक गिरा. निफ्टी 24,668 पर हुआ बंद. भारत की थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष नवंबर में कम होकर 1.89% पर आ गई. और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट. ब्रेंट क्रूड $73.84 प्रति बैरल पर था. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान पर बंद हुए. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 384 अंक कम होकर 81,748 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 अंकों की गिरावट से 24,668 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन कहीं बेहतर था और दोनों सूचकांकों में बढ़त दिखाई दी. मिड कैप सूचकांक 0.7% से अधिक की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई.
And now we're joined by Dev Kumar calling us from Delhi.
नमस्कार जी.
जी 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 देव जी, सवाल पूछिए अपना. जी
हाँ, मेरे तीन सवाल है मैडम. ये पहला सवाल ये है कि ये सोने का जो रेट होता है मार्केट में, ये इंडिया का रेट कौन तय करता है, कौन की मार्केट तय करती है. पहला सवाल ये है कि और अगर हम विदेश जाते हैं, विदेश से हम कितना सोना ला सकते हैं एक नंबर के अंदर. जेंट्स को 10 ग्राम और लेडीज को 40 ग्राम छूट है.
देखिए जी, पहली बात जो आपने रेट की बात करी, जो हमारा जो गोल्ड का रेट होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे सेट होता है. उसके बाद उसको जो है बॉम्बे में लाते हैं और जो ट्रेडिंग होती है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होकर फ्यूचर और फॉरवर्ड का रेट उसमें डिसाइड होता है. जहाँ तक व्यापारियों की बात है, वो रेट कोई मुंबई का हिंदुस्तान में मुंबई का रेट से चलते हैं, कुछ लोग दिल्ली के रेट से चलते हैं, दो रेट अलग अलग चलते हैं जो खरीदारी की बात है। जहां तक आपने बात करी कितना आप सोना लेके आ सकते हैं, देखिए अगर आपने पहना हुआ सोना है जो आप पहन रखे हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो कितना भी सोना लेके आ सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप गोल्ड बिस्किट के फॉर्म में या गोल्ड रॉ फॉर्म में लेके आ रहे हैं किसी तरीके से, तो उसमें रुकावट है, उसमें आपको फिर रुकावट ऐसी नहीं कि आप लेके नहीं आ सकते, पर आपको उसमें कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ती है, वो देख के आप कितना भी ला सकते हैं।
अगले कॉलर गुड़गांव से हैं, विशाल हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
Hi, good evening. Sir, my question is also related to gold, but it's actually on SGB. So I have been investing in SGBs for past 4-5 years now, but now I think government has stopped SGB. But I still want to invest. Rather than physical gold, what is the means which I have to invest further?
You see, sovereign government bonds जो आप बात कर रहे हैं वो सरकार ने बीच में रोक देती है कभी कभी, पर ये हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, काफ़ी समय से इनका चलन चलता आ रहा है और ओपन मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है इनकी। तो जरूरी है अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं, अगर नए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स बंद कर रखे हैं, तो आप इस समय जो है ओपन मार्केट से खरीद के इसमें निवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप निवेश नहीं कर सकते हैं।
Alright, we have रंजन कुमार फ्रॉम दिल्ली ऑनलाइन। यस रंजन जी, सवाल पूछे अपना। जी नमस्कार जी।
नमस्कार,
मैं जानना चाहता हूँ, मैं 2020 सितंबर 2023 को SGB लिया था, तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि उसको मैं सेल करना चाहता हूँ, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा क्या, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में मेरा दो है तो चाहता हूँ, ये दो जानकारी चाहिए।
देखिए जो आपने तारीख बताई है उसके हिसाब से आपका कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और उसके लिए अगर कितना लगेगा वो आपका जो निर्धारित डॉक्यूमेंट है जब आप करेंगे या एक CA से आप कंसल्ट करें वो आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे।
और लेट्स टेक अ लुक एट स्टॉक इन डिटेल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स टुडे एंडेड विद लॉसेस ऑफ अराउंड 0.5% अमिड वीक ग्लोबल क्यूज। द 30 शेयर इंडेक्स एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स फेल 384 पॉइंट्स टू क्लोज एट 81,748। सिमिलरली द Stock Exchange Nifty 50 dipped 100 points to end at 24,668. The broader market indices at the BSE outperformed the equity market. The mid-cap index climbed over 0.7% and the small-cap index rose nearly 0.5%. In the Sensex Index, 24 out of 30 companies ended lower. In the top laggards, Titan fell over 2%, Adani Ports lost over 1.3%, TCS dropped more than 1.2%. Conversely, among the top gainers, Indus Ind Bank gained over 1.2%, Bajaj Finance climbed 0.3% and Power Grid rose over 0.2%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors ended in the negative territory. In the top laggards, metal dipped over 0.9%, tech shed 0.8% and oil and gas lost over 0.7%. Meanwhile, among the top gainers, realty surged over 3%, consumer discretionary rose almost 0.7% and industrials added over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,346 companies advanced and 1,796 declined, while 98 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 128 companies hit their 52-week high, while 15 hit their 52-week low. More discussion on this later. Right now, we're joined by Shankar calling us from Bhopal. Shankar ji, aap bahut der se hold kar rahe hain. Thank you so much. Sawal puchhiye.
Good evening, Market Mantra team. Good evening, Aman ji.
Good evening.
Sir, I have just two questions. One is about this budget expectation. As an expert, do you expect a populist budget or do you expect a prudent budget? Populist budget, because the government is on the back foot, which is running the stories of big business houses, farmers, the government and my bahana is a scheme that the government will go back foot and do something, populist budget or prudent budget, because it will affect our market effect. और दूसरा सवाल सर मेरा है कि ये टैक्सेशन को लेके कैपिटल गेन टैक्स जो कंस्ट्रक्शन पे इतना ज्यादा है रियल एस्टेट पे, बिकॉज रियल एस्टेट एक्चुअली बिल्ड्स द इंडिया, वेयर एज द गोल्ड डजंट बिल्ड इंडिया, गोल्ड मींस ब्लॉकिंग द मनी एंड इट इज बेसिकली वेस्ट, सो शुडंट दे रैशनलाइज इट एंड डू इट प्रॉपरली, कैपिटल गेन टैक्सेशन लोअर फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एक्टिविटी रियल एस्टेट एंड स्लाइटली हायर फॉर इक्विटी एंड इवन हाईएस्ट फॉर द
बिल्कुल जी, पहली बात तो जो आपने बात करी सरकार के बजट की, अभी तो आने में समय है, पर जो इस सरकार का चलन रहा है ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं लेके आए हैं अभी तक 2014 से अब तक, तो मेरे विचार में आगे भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि पॉपुलिस्ट बजट लाएंगे, रैशनल बजट होगा। जहां तक किसानों की बात है, हिंदुस्तान में किसान और किसान वर्ग और किसान एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो अभी भी करीबन 70% के बीच में आती है, तो उसके ऊपर जरूर तवज्जो रहेगा उस बजट में भी और हमेशा रहा है पहले भी। जहां तक आपने बात की, जो उनका दूसरा प्रश्न था
कैपिटल गेन्स
के बारे में, देखिए जी सोना भी अपनी जगह सही है और रियल एस्टेट भी। काफी सारे लोग रियल एस्टेट को लेकर डंप कर देते हैं, खाली पड़ा रहता है, उससे प्रोडक्टिव यूज नहीं होता है, आर्टिफिशियल ग्रोथ से प्रोडक्टिव यूज नहीं होता है। तो ये कहना कि सोना नहीं होता, सोने से एक गृहिणी को सिक्योरिटी मिलती है, उसको लोगों को दिखाने के लिए मिलता है, घर की वृद्धि के बारे में दिखाई दिखता है, और हमेशा की सिक्योरिटी है, कभी भी कुछ हो किसी को तो वो उसको लिक्विडेट कर सकती है। तो इसलिए कहा जाए आप रियल एस्टेट नहीं लिक्विडेट किया जा सकता। तो इसे दोनों की अपनी अपनी जगह है। जहां तक कैपिटल गेन्स की बात है, अपना सुझाव आप मंत्रालय वित्त मंत्री जी को भेजिए, हो सकता है उनको ठीक लगे तो आगे प्रस्ताव लेके चले।
जी बिल्कुल,
दैट्स वेल सेड। नो, सोना एक महिला के लिए सिक्योरिटी है।
बिल्कुल। अब भोपाल से चलते हैं बैंगलोर, जहां से एनआर प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनआर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
Hi, good evening, Market Mantra. Hi, this is NR Prasad from Bangalore.
Yeah, good evening.
Hello, Lalima ji. Hello, Sonu ji.
Hello.
Mr. Agarwal, two questions.
Very sir.
US GDP showing positive responses, following with Indian manufacturing also reviving. So, which is the best bet for investing in the Q4 in the manufacturing sector, especially auto or in the manufacturing sector? My second question is, inflation is easing out. Would FMCG revives in Q4? Thank you. These are my two questions.
Yeah, as far as US GDP is there, you know, Trump has come up with a very strong vote of confidence, and he is very much for the people of United States. So naturally, that is bound to happen. As far as the relationship between India and US is there, that has been a positive outlay. There would be some setbacks because he's already given some kind of a warning to a large part of the world for the customs duties which he's extending to raise. So we do not know if there'll be too much raise in manufacturing per se. But when you talk of India in specific, they will be a lot of growth in India in terms of technology-driven manufacturing segments. So whatever is a technology-driven manufacturing segment, that is something which you can look at in this quarter going forth. The second question which you had was on
inflation
and FMCG. And the FMCG. You see, there has been an easing of inflation for sure. Hopefully, this is expected to ease further. However, we should not forget that, you see, these months from November going till February are celebration months. Whichever religion you may be coming from, they're all celebrations, weddings, festive seasons which are happening. So a lot of people actually withdraw money from various markets and their deposits to go in forward in terms of investing in some of these areas and these expenses. So naturally, inflation is bound to go up in these periods. I don't think too much of easing may happen, but I'm happy that at least some easing has happened as against last. That will give some respite to people. Also, the oil prices which are seeing a lower turn internationally, that also has a psychological impact on the oil market and ultimately does ease inflation in due course.
So he wanted to know FMCG's Q4 prospects.
As far as FMCGs are concerned, they would remain to be consistent as they are. They will not be too much of a rise or fall in FMCG per se.
All right. We now have Subhash, who's calling us from Mumbai. Ji, Subhash ji, apna sawal puchhiye. Ji.
Haan, namaskar, madam. Namaskar, sir.
Namaskar, ji.
Namaskar, ji.
Mera sawal hai ki apan jo employee क्रेडिट सोसाइटी से जो लोन लेते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है वो टैक्स रिटर्न में हम लोग शो कर सकते हैं क्या, फाइल कर सकते हैं क्या?
देखिए जी, जो टैक्स रिटर्न में इंटरेस्ट एग्जेम्पशंस है वो बड़ी क्लियर है किस चीज के लिए है। अगर आप हाउसिंग के लिए लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वहाँ का लोन का इंटरेस्ट आ सकता है। अब ये जो एम्प्लॉय स्कीम है, स्कीम के अंडर आप जो लोन ले रहे हैं, अगर वो आप सीए से कंसल्ट करें, अगर वो अलाउ करते हैं, तो आप हाउसिंग लोन के लिए तो आप ले सकते हैं। कुछ जगह उन्होंने ईवी कार कार के लिए भी लोन कुछ स्टेट्स ने दिया है, तो अगर आपके स्टेट में भी उन्होंने दिया है तो उसमें भी आपको बेनिफिट टैक्स में मिल सकता है। इसी तरह कुछ और भी लोन्स पे रिबेट्स हैं, वो भी आप बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होता है, तो उनमें भी आप चेक कर सकते हैं। बट जहां तक ये स्पेसिफिक है, ये आप मेरे विचार में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पता करेंगे तो बेटर रहेगा।
इस बीच बता दें कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर 84.86 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.01 पर था। और कोलकाता से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी स्वागत है, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग टू ऑल मार्केट मंत्री टीम, दिस इज राजेश घोष फ्रॉम कोलकाता। मैडम मेरा छोटा सा प्रश्न है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी काउंसिल का फाइनल जो मीटिंग है जीएसटी वेव्ड अप या फिर कम होने का, ये क्या अनाउंस हो गया या होने का है?
नहीं देखिए जी, अभी तक जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें इसके ऊपर कुछ आया नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में इसके ऊपर कुछ आए, बट अभी इसके बारे में मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कुछ डिसीजन आया है। वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा।
ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट India's Wholesale Price Index, WPI, based inflation for the month of November eased to 1.89% on an annual basis, down from 2.36% in October, according to the Ministry of Commerce and Industry data released today. The annual inflation rate for primary articles in the Wholesale Price Index, that's WPI, declined to 5.49% in November, down from over 8% in the previous month. The data showed that inflation in food items fell to 8.92% in November compared to 11.59% in October. This was driven by a significant drop in the prices of vegetables, which fell by 28.57% as against 63.04% in October. Onion prices also decelerated sharply, registering a fall of 2.85% during the month, down from over 39% in the previous month. The fuel and power category witnessed further deflation of 5.83% in November. Meanwhile, in the manufactured products category, inflation rose to 2%, up from 1.5% the previous month. Earlier last week, India's retail inflation based on consumer price index, that's CPI, had eased to 5.48% in November within the tolerance band of the Reserve Bank of India. The wholesale price index, or WPI, measures the change in prices of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses with other companies. Unlike the CPI, which tracks prices of goods and services purchased by consumers, WPI tracks factory gate prices and retail prices. Long story on inflation there, Aman. What's your comment on this? Inflation down is good news?
It is certainly a good news for everybody that, you know, inflation eases. It's been going up and much beyond the band of what RBI has been wanting. Mm-hmm. But, you know, one should not have too much hopes, as I just said, because it is festive seasons and people end up spending quite a bit in terms of going forth. So there is expected that it might rise further again if there are more
spending.
And
of course, these are wholesale prices.
These are wholesale prices. Yeah. And this will continue to be stable. But the CPI would certainly go up.
और अब कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं अतानु साहा, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड व्हाट्स आर डिफरेंट वे वी इंक्रीज आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन? Thank you.
Now, very nice question, sir. First of all, we have gross national production, which is the actual and better measure. But unfortunately, we're not able to measure that because it involves people who are working overseas, also their contribution to the growth of economy to be captured. So the best measure which is captured and being informed for the over 100 years now is the gross domestic production, which is the total production level which an economy has, whether it is manufacturing, services, agriculture, whatever total amount of production which is done on an annual basis and which is monitored on almost on a monthly basis and reported to the statistical department is then contributing to the total growth of the economy. And that's what we normally compare when we say we are growing by 6.5% or 7% or 7.25%. That's what our growth of total production level has gone up in the economy.
Faridabad se Nitin Kumar hai hamare agle caller. Nitin ji, sawal puchhe.
नमस्कार जी।
नमस्कार।
नमस्कार
जी, मेरा ये पूछना है कि अगर हम शेयर मार्केट में जाना चाहें तो उनके आपके प्राइवेट कोई ऐसे होते हैं, फर्म होते हैं जहां हमसे मिलके उनकी हेल्प से शेयर मार्केट में एंट्री करना है? और दूसरा सवाल ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए पहले हम जी 15 फॉर्म भरते थे नॉर्मल के लिए और सीनियर स्टूडेंट के लिए एच 15 फॉर्म भरा जाएगा, तो हमारे एफडी में कितना मैक्सिमम अगर अमाउंट बैंक में रहे और उसके बाद हमारे को फिर टीडीएस कटेगा, तो जैसे 40 लाख से ऊपर एफडी बन जाए तब टीडीएस कटेगा, इसके लिए थोड़ा आप हाँ बता पाएंगे?
देखिए जी, ऐसा है कि बैंक में जो टीडीएस है वो एक फिक्स अमाउंट पे कटता ही कटता है, अनलेस अगर आप सुपर सीनियर्स जैसे कहा गया 75 इयर्स से अबव हैं तो फिर आपका टीडीएस आपके राइट है, आप बैंक को लिख के दे सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे इंडिविजुअल लिख के बैंक को दे सकते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटें, जिसका एक फॉर्म होता है वो फॉर्म भर के दीजिएगा तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है बिकॉज हर एक बैंक के पास आप अलग अलग अमाउंट का अमाउंट रख सकते हैं, अगर 10 बैंकों में रखते हैं वही अमाउंट को डिवाइड करके तो कहीं पे भी आपका नॉर्मल जो अमाउंट है उसे टीडीएस नहीं कटेगा।
ऑलराइट, India and Sri Lanka today exchanged protocol amending agreement between the two countries for avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes in income. Both sides also exchanged MOU on training and capacity building of civil servants of Sri Lanka. After bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and visiting Sri Lankan President Anuradha Kumara Dissanayake in New Delhi, the agreements were exchanged. Both leaders held discussions on issues of mutual interest, a grant assistance of $14.9 million for the signalling project in Moho Anuradhapura section was announced on the occasion, and financial assistance scheme to 100 new students each annually from the University of Jaffna and Eastern University until the end of academic courses for the beneficiaries was also announced. All right,
Bangalore se jud gaye hain hamare saath Subrata. Subrata ji, bahut bahut swagat, sawal puche.
गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्री टीम।
गुड इवनिंग।
मेरा सवाल ये है कि हाउ टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक, लाइक समटाइम्स वी सी दैट पी रेशियो इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू सेक्टर पी, बट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज वेरी लो, सो हाउ टू एनालाइज दैट, दैट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड द स्टॉक, सो इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक?
देखिए,
so that is my question.
Yeah, the thing is that these ratios are generally calibrated for giving you a fair value of the stock. Now, what happens is that we don't look at only one ratio or one value, and that's why to find out what is a fair value in actual terms is different. What fair value Government of India does for taxation purposes and other things is different from the one which is done by the market operators. In my opinion, you need to stick to one or two of these values, ratios, and see whether it is going up or below, and then listen to advisories which come specifically for stocks in the share market, and then take a decision of whether you want to go forward with it. Also, depending on what price you have bought at makes a big decision in what the fair value will be for you, because you know every one of us is buying the same share at different prices at different times during the day itself, so that will make a difference in terms of identifying the real fair value which is going on. If you really go into fundamentals and technical analysis of a share, then it will take long for you as an individual to actually go and identify the real fair value of a stock.
All right, we are now connected with Karnataka and Mallikarjun ji is online. Yes, please ask your question. Mallikarjun ji. Hello? 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 Okay, we move on to Delhi. Yogesh Sharma ji is online.
शायद उनसे भी हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं एस्टैब्लिश हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 41.7% दर्ज किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा 36.1% था और वर्ष 2023-24 में इसमें 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। और दिल्ली से योगेश शर्मा से हमारा संपर्क फिर स्थापित हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी, सवाल पूछे।
जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा सवाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं वो टैक्स बचा लेते हैं, जबकि एक एम्प्लॉई जिसके सैलरी अगर मान लीजिए 25 लाख रुपए है और उसके ऊपर अगर 4 लोग निर्भर हैं तो वो टैक्स 4 लोगों में डिवाइड नहीं होता है, उसको अकेले को टैक्स देना पड़ता है। तो इस
आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए जी ऐसा है कि जो बड़े रिच लोग होते हैं उनके पास लोग होते हैं जो एनालाइज करके टैक्स प्लानिंग कर पाते हैं। हम एज इंडिविजुअल आप या मैं हूं तो हमारे पास इतने साधन नहीं होते कि हम किसी को हायर करें जो हमारी टैक्स प्लानिंग करे, क्योंकि टैक्स प्लानिंग करने का जो खर्चा आएगा वही हमारी इनकम से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो ये कहना कि रिच लोग कर पा रहे हैं, रिच का चक्कर नहीं है। जो भी इंसान टैक्स प्लानिंग करेगा तो उसको प्रावधान कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। बहुत सारे अमीर भी ऐसे लोग हैं जो टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं और अल्टीमेटली उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है और कई बार खोना भी पड़ जाता है। तो इसलिए मेरे विचार में ये अमीर और गरीब का चक्कर नहीं है, ये चक्कर है आपका नॉलेज का कि आप टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली करते हैं, जो प्रावधान सरकार ने दिए हैं उनको इस्तेमाल करके अपने लिए पैसा बचा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। नहीं
राइट, आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। 5 प्रमुख एशियाई बाजारों में से 4 आज गिरावट में रहे। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.9% की गिरावट में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.22% के नुकसान पर बंद हुआ। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई और जापान के निकेई में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.28% की बढ़त दर्ज हुई। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक गिरावट पर चल रहे थे। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.8% से अधिक के नुकसान पर था और लंदन का फुटसी, जर्मनी का डैक्स दोनों में 0.3% से अधिक की गिरावट थी। इस बीच दिल्ली से विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी स्वागत है, जल्दी से सवाल पूछें।
गुड इवनिंग मार्केट मंथरा टीम। सर इज दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट बाइंग इनटू स्टॉक मार्केट? And the second question is, what about the shipbuilding companies? Are they going to do good in near future or how, sir?
Yeah, shipbuilding companies will certainly do better because there are large number of ports which are getting integrated. Even the Adani port across the globe is happening, and even the Silk Route, which Modi ji has talked about in the the G20 meeting in India, clearly is there. As far as the other part was about investment, I think you may need to hold on for a few moments more because there is expectation of some more fall which might happen given the new presidency in the US and the impact it may have in the next quarter.
All right, let's move on to oil. Oil prices declined today amid profit booking and as market participants awaited the interest rate outlook by the US Federal Reserve later this week. Brent crude was trading below $74 per barrel, declining over 0.8%. WTI crude also fell over 1% to trade at around $70.50 per barrel, according to the latest reports. And moving on, the US Federal Reserve's FOMC, Federal Reserve's Federal Open Market Committee, FOMC, is to begin its two-day policy meeting from tomorrow. The U.S. Fed Reserve will release its next policy decision on December the 18th. It will also offer updated projections on potential rate cuts for 2025 and possibly 2026. The Fed Reserve had to take decision to slash interest rates by 25 basis points in its last meeting. Your quick comment on this, Aman?
No, I think, the Fed is yet to take charge of what is the new presidency going to happen. Uh-huh. There are always changes which happen with the new president or the prime minister in place. Hmm. The Fed is following the policy which they have been following for so far. Trump has come up with a lot of changes which are expected to happen. We may have to wait to the next policy to really see what is the wave or the movement which we may have and which will influence large part of the world, including India.
Right. चलते चलते बता दें, सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.21% बढ़कर 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.25% बढ़कर 91,180 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की की गई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.18% की बढ़त में था। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें कार्यक्रम को भी यहीं विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी।
धन्यवाद, नमस्कार।
और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ऑलराइट फ्रेंड्स, हियर वी बिफोर वी क्लोज इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स रजिस्टर लॉसेस, सेंसेक्स फॉल्स 384 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,668, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 1.89% इन नवंबर दिस ईयर, एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन टुडे, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $73.84 पर बैरल। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माय सेल्फ लालिमा अनेजा डैंग एंड माय को-एंकर सोनू सूद साइनिंग ऑफ। नमस्कार,
नमस्कार,
नमस्कार।
Market Mantra.